તારીખ 7-8-1986 શ્રી નિર્ભ્રાંત દર્શનની કેડી ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 39.
અનંતકાળની છંદે ચાલી પરિશ્રમ કરે તો પોતે પોતાથી જ્ઞાન પામે નહીં. 34 પાને નીચેના પેરેગ્રાફમાં વચ્ચેથી શરૂ થાય છે. શું પ્રકરણ છે જેને આત્માનું પૂર્ણ શુદ્ધિકરણ કરવું છે? હિન્દી વાલી આપણે અશોકનગર પ્રકરણ ચલતા હૈ. હિન્દી મેં ખોલો તો ગુજરાતી પઢ સકતે હો આપ? હોય તો એમને આપો, હું તો સીધો હિન્દી કરી લઈશ. અહીંયા તો સંભવ નથી. જિસકો અપને આત્મા કો પૂર્ણ શુદ્ધ કરના હૈ, એસે અભિલાષાવંત જીવ કો આત્મજ્ઞાની સત્પુરુષ આત્મજ્ઞાન કા રાસ્તા દિખાને વાલા મિલ જાય તો એસે સત્પુરુષ કા કિતના મહત્વ હૈ વો પ્રકરણ ચલતા હૈ. જૈસે અંધે કો કોઈ રાસ્તા હાથ પકડ કર અપને ઘર લે જાય, એસે અનાદિ સે અપને સ્વરૂપ કે વિષય મેં ખુદ સ્વયં અંધા કી તરહ સ્થિતિ મેં રહા હૈ, અંધે કી સ્થિતિ મેં રહા હૈ. મૂળ મેં અપના સ્વરૂપ કૈસા હૈ, આત્મા કા તાત્વિક સ્વરૂપ કૈસા હૈ, તત્વતઃ કૈસા હૈ, વો અંતઃતત્વ સ્વરૂપ કો અંતર્મુખ હોકે કભી નહીં જાના. જિસને જાના ઉસને લિખા કે આત્મા એસા હૈ, એસા હૈ, એસા હૈ, એસે ગ્રંથ કો શાસ્ત્ર નામ દિયા, એસે ગ્રંથ કો બતાયા કે શાસ્ત્ર, ઓર એસે શાસ્ત્ર પઢકર બહિર્મુખ જ્ઞાન સે જાના કે આત્મા એસા હૈ, આત્મા એસા હૈ, આત્મા એસા હૈ, જીવ કા એસા સ્વરૂપ હૈ. ફિર ભી જૈસા જાના વૈસા અનુભવ મેં તો તબ આતા હૈ કે જબ અંતર્મુખ જીવ હોતા હૈ, તબ અંતર્મુખ હોકર કભી જાના નહીં. ઓર અંતર્મુખ હોકર જાનના ચાહીએ એસા ભી શાસ્ત્ર જ્ઞાન સે જાના, શાસ્ત્ર મેં પઢકર જાના, શાસ્ત્ર કી પઢાઈ ભી વહાં તક તો કી કે અંતર્મુખ હોકર અંતતત્વ સ્વરૂપ આત્મા કો જાનના ચાહીએ. ફિર ભી અંતર્મુખ કૈસે હોના યે સમસ્યા રહે જાતી હૈ, ઓર યે સમસ્યા રહી બાકી હૈ, ઇસલિયે અંતર્મુખ નહીં હો પાયા ઓર અપને આત્મા કો જાના ભી નહીં. યે અંતર્મુખ કૈસે હોના ઇસ વિધિ કો પ્રત્યક્ષ તોર સે દિખાને વાલા स्वानुभवी सत्पुरुष होते हैं, तो प्रत्यक्ष तौर से दिखाते हैं। ठीक इसी कारण से इसका महत्व है, जो कुछ महत्व है वो तो इसी कारण से। इसलिए यहाँ ये बात ली गई है कि अनंत काल तक निज छंद से मैंने स्वच्छंद पूर्वक यानी कल्पना कर करके कितना भी परिश्रम करे, कोई भी जीव कितना भी परिश्रम करे तो भी उस प्रकार से वो अपने आप से स्वयं का आत्मज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता, आत्मज्ञान को नहीं पाता। किंतु प्रत्यक्ष ज्ञानी की आज्ञा का आराधक सहज मात्र में ज्ञान प्राप्ति आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, आत्मज्ञान को पा सकता है। ऐसा दिखने में आता है, ऐसा अनुभव कर सकते हैं, ऐसे बहुत से दृष्टांत मिलते हैं कि अपने आप से बहुत परिश्रम करने के बावजूद भी आत्मज्ञान नहीं हुआ और प्रत्यक्ष आत्मज्ञानी सत्पुरुष का योग मिलने से, इसका बोध मिलने से आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई सहज मात्र में। ज्ञानी की आज्ञा का, प्रत्यक्ष ज्ञानी की आज्ञा का आराधक, मैंने विद्यमान ज्ञानी चाहिए। इस काल में तो ये बड़ी दिक्कत रही कि प्रत्यक्ष ज्ञानी की भेंट होना, इसका संयोग मिलना बहुत कठिन है। फिर भी जीव अगर चाहता है कि मुझे प्रत्यक्ष ज्ञानी का योग चाहिए और इसकी तीव्र भावना होती है तो करीब करीब इसको मिल जाता है। भावना वाले का की भावना प्राय निष्फल नहीं जाती, इसी भावना का स्वरूप ऐसा है कि जिसके साथ कुदरत बंधी हुई है, कुदरत से कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि उसको सत्पुरुष मिल जाता है। इसका यही अर्थघटन बैठता है कि सत्पुरुष तो विद्यमान होते ही है, लेकिन जिसकी दृष्टि इसकी खोज के पीछे होती है उसको इसकी विद्यमानता का पता चलता है। और जिसको इसकी खोज नहीं है उसको अगर मिल गया तो भी क्या, नहीं मिलने के बराबर है, क्योंकि उसको पहचान नहीं हुई ये सब पुरुष है, तो मिला तो नहीं मिला बराबर है। और जिसको सही भावना होती है उसको तो विद्यमान सत्पुरुष वो ढूंढ निकालता है, खोज लेता है, उसको कहने में आता है कि उसकी भावना की सफलता हुई और उसको सत्पुरुष की भेंट हो गई, उसको ऐसा संयोग मिल गया भावना अनुसार। प्रत्यक्ष ज्ञानी का आराधक, ज्ञानी प्रत्यक्ष ज्ञानी को आज्ञा में रहने वाला, उसकी आज्ञा में अपने आप को समर्पित करने वाला जीव, सहज मात्र में मैंने अल्प पुरुषार्थ में अल्प परिश्रम में आत्मज्ञान को पाता है। यह बात निमित्ताधीन दृष्टि पूर्वक निरूपित नहीं की, किंतु वस्तु की स्थिति ही ऐसी है। इसमें थोड़ा सूक्ष्म विषय है, ये विषय ऊपर ऊपर से देखें तो यह बात निमित्ताधीन दृष्टि वाली दिखती है। सत्पुरुष का योग से आत्मज्ञान की प्राप्ति, लेकिन कोई ऐसी वस्तु स्थिति है कि आत्मा का अंतः तत्व जो है वो दिखाने वाला मिलता है और देखने वाले को पूरी इसकी जब गरज होती है तब वो देखता है। निमित्ताधीन दृष्टि तो जब कही जाए कि निमित्त मिले और कार्य होवे ही, लेकिन अनंत बेर ज्ञानी का संजोग मिला है, आत्मज्ञान नहीं हुआ है। निमित्त से अगर कार्य होता तो पहले दफे मिलते ही हो जाता, तो मिला है अनंत बार। लेकिन जिस जीव को आत्मज्ञान की प्यास है उसी को मिलता है, तब मिला कहा जाता है और तब उसको अपने आप का अंतर्भूत का रास्ता नजर आता है, वहां तक नजर नहीं आता। दिखाने वाला मिलने पर भी अगर खुद को देखने की चाह नहीं है, खुद को देखने की प्यास नहीं है, तो दिखने में नहीं आता है। इसलिए वो निमित्ताधीन दृष्टि से निरूपण नहीं है। निमित्ताधीन दृष्टि से निरूपण तो इस तब कहा जाए कि निमित्त आया और कार्य हुआ, और नहीं आया तो नहीं हुआ, और आया इसलिए हुआ, लेकिन आया इसलिए हुआ ऐसी बात नहीं है। निमित्त निमित्त रूप के स्थान में था और उपादान की तैयारी थी तब कार्य हुआ, ऐसा दो पदार्थ के बीच अपेक्षित धर्म बहुत से हैं, बहुत से ऐसे अपेक्षित धर्म हैं। विभाव कार्य में तो सारा करणानुयोग इस पर खड़ा है, इस अपेक्षित धर्म की नींव पर पूरा करणानुयोग का स्ट्रक्चर है कि जीव का ऐसा परिणाम और कर्म का ऐसा बंधन, और जीव कर्म का ऐसा उदय और जीव का ऐसा उदय अनुसार परिणाम, ये दोनों अपेक्षित धर्मों पर बात चली है। लेकिन अपेक्षित का मतलब क्या, कि उपादान की कुछ चौकस प्रकार की, ठीक प्रकार की, अमुक प्रकार की परिस्थिति में ही वो निमित्तिक भाव बुला जाता है इस परिस्थिति को, और दूसरा पदार्थ के संयोग को निमित्त कहने में आता है, तब कहने में आता है जब ये परिस्थिति निमित्त के अनुकूल होती है। तब जब उपादान की स्थिति निमित्त के अनुकूल नहीं रहती है तब संयोग के पदार्थ पर निमित्त का आरोप भी नहीं किया जाता, नहीं कर सकते भी। तो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला अपेक्षित धर्म है, उसका ज्ञान प्रयोजनभूत ज्ञान कर लेना चाहिए। उसका ज्ञान मैंने उसका बहुत से धर्म है ऐसे, लेकिन उसका प्रयोजनभूत ज्ञान कर लेना चाहिए। तो यहाँ जो ज्ञान है वो प्रयोजनभूत ज्ञान है। प्रयोजनभूत ज्ञान करना चाहिए इसका क्या मतलब, कि यहाँ जो बात चलती है वो प्रयोजनभूत विषय से चलती है, कि मेरी आत्मा को मेरे स्वरूप का ज्ञान आत्मज्ञान होने में कोई अपेक्षित धर्म है क्या। हाँ, अपेक्षित धर्म है। अगर मैं पूरा आत्मज्ञान की खोज में आत्मज्ञान पाने की भावना के पीछे पूरी लगन से अगर मैं उपस्थित हूँ तो आत्मज्ञानी का निमित्त है, उसका निमित्त नैमित्तिक संयोग निमित्त नैमित्तिक अवस्था में कार्य होगा, वरना निमित्त भी बेकार है, जहाँ तक निमित्त नैमित्तिक भाव की परिस्थिति पैदा नहीं। और जब नैमित्तिक भाव की परिस्थिति स्वयं खड़ी होती है, तब निमित्त का निमित्त रूप में सार्थकपना माना जाता है व कहा जाता है। फिर भी निमित्त कोई उपादान का कार्य नहीं करता, लेकिन उपादान के कार्य के अनुकूल ये संयोग है, ऐसा कहने गया। ये विषय थोड़ा सूक्ष्म है, अपेक्षित करने वाला है। प्रयोजन भूत ज्ञान इस विषय का कर देना चाहिए। सभी प्रयोजन ऐसे बहुत अनंत धर्म है, निमित्त नैमित्तिक अपेक्षित धर्म अनंत है। विश्व अपने प्रयोजन की बात पकड़ लेनी चाहिए। क्या होता है, दो प्रकार से जीव भूल खाता है। एक तो इस प्रकार से भूल खाता है कि निमित्त कुछ नहीं करता है, इसलिए आत्मज्ञानी फात्मज्ञानी मैं कुछ नहीं जानता। जहां उनको स्वयं को जरूरत लगे, भूख लगे, प्यास लगे, अज्ञान दशा में बहुत से पदार्थ की आवश्यकता दिखे, वहां तो निमित्ताधीन परिणमन कर लगे। पर वहां कुछ वहां दिखे नहीं कि मेरे उपादान से मैं खड़ा हूं, वहां तो नहीं देखा। अज्ञान दशा में ऐसे दूसरे दूसरे निमित्त के प्रति तो ढले, और शास्त्र पढ़कर देव गुरु शास्त्र और सत्पुरुष के निमित्त प्रति यानी ढलन स्वच्छंद के बस नहीं आवे, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो वो तो परद्रव है, वो भूल खाता। इसमें कहा कि वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो तो खुद ही ना देते हैं कि हम तो किसी का कर सकते हैं। मगर जब जीव की तैयारी होती है, उपादान तैयार होता है, तब उसको देवगुरु शास्त्र और सत्पुरुष का बोझ सुहाता है। पर सुहाता है तब उसको पाया, उसने पाया ऐसा कह देते हैं। जब सुहाता है तब, उपादान की तैयारी नहीं है तो सुहाता नहीं है, नहीं सुहाता है तो पाने का सवाल नहीं रहता, और निमित्त का आरोप होने का सवाल नहीं रहता। ये तो खास प्रयोजन की बात है। एक तो निमित्त की भूल ऐसे लोग कर लेते हैं कि जैसे दूसरा मेरे पर कुछ असर करता है, निमित्त की मेरे पर असर होती है ऐसी समझ है, वो भी भूल वाली है। और जहाँ प्रयोजन है वहाँ तो निमित्त को पकड़े, और वहाँ तो बोले नहीं कि ये निमित्त कुछ नहीं कर सकता है, और देव गुरु और शास्त्र और सत्पुरुष के विषय में ये तर्क लड़ावे तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसको प्रयोजन भूत ज्ञान नहीं हुआ। कौन सा प्रकार का प्रयोजन भूत ज्ञान, कि देशना लब्धि कभी किसी जीव को देशना लब्धि बिना यानी प्रत्यक्ष ज्ञानी का बोध बिना कभी किसी जीव को प्रायोग लब्धि देशना लब्धि आती नहीं, देशना लब्धि नहीं होती है उसको। बिना देशना लब्धि कोई नैसर्गिक सम्यक दर्शन हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। या तो वर्तमान में अधिगमज हो गए तो बात कोई रहती नहीं चर्चा की, लेकिन पूर्व में देशना लब्धि भी नहीं हो गए और नैसर्गिक सम्यक दर्शन और आत्मज्ञान नैसर्गिक रूप से हो जाए ऐसा कभी नहीं। तो ये तो इनका विषय का प्रयोग इनको ज्ञान चल गया। अच्छा ये बात तो जिसने शास्त्र पढ़ा है इसके लिए भी, लेकिन अनादि से कोई अनजान है, अनजाना है ऐसा भी, कि जिसको निमित्त निमित्त संबंध की कोई चर्चा या कोई शास्त्र या कोई सिद्धांत ज्ञान में जिसका प्रवेश नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या करना है? तो उसको आत्मज्ञान पाने की गरज है या नहीं है, इतना सवाल है। है तो वो सहज ही सत समागम ढूंढेगा, किसका किसका समागम करेगा वो, इसने रास्ता दिखा हो। जो भी कार्य जिसको करना है वो कम तकलीफ में करना चाहेगा या पूरी तकलीफ में रहकर करना चाहेगा? कोई गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाकर ऐसा बोलता है कि तुम जितना भी विरुद्ध चलना हो चलो, मैं तुम्हारा जो काम है वो तो जैसे कैसे भी करा लूंगा। इसको तो साफ साफ करके ऐसे ही करेगा, तो तुम अनुकूल हो जाओ, कैसे जैसे कैसे भी पैसा देकर भी करवा लेगा। ये तो सहज बात है कि जिसको रास्ता चाहिए और अनादि से नहीं मिला है, ऐसा उनको जो पता चलता है, कैसे पता चलता है कि अपना अस्तित्व अनादि से वो जाना, पर अनादि से अस्तित्व है और वर्तमान अस्तित्व में मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, शुद्धता की प्राप्ति नहीं है, तो रास्ता नहीं मिला है, वो बात सही है। रास्ता अनादि से नहीं मिला है तो क्या अनादि से मोक्ष पाने का विचार नहीं किया? तो विचार तो किया था, लेकिन फिर भी नहीं मिला है, वो बात तो अवश्य है। तो उसको बहुत तकलीफ के बाद ये काम नहीं हुआ है ऐसी समझ आ जाती है। दूसरा कि अंतर्मुख का मार्ग नजर नहीं आता है, तो इस विषय में तो उसको अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। क्या दिखता है? कैसे अंतर्मुख होना और कैसे अंतर्मुख होकर स्वयं के स्वरूप को अनुभूति में लेना, वो विषय में तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। अब जब अंधेरा दिखता है तो उसको कोई प्रकाश डाले तो उसमें उसको उसको अनुकूलता है या प्रतिकूलता है? प्रकाश डालने वाले के प्रति आदर करेगा या ऐसा कहेगा नहीं मैं तो ढूंढूंगा मैं अपने आप, कोई जरूरत नहीं है? ऐसा जिसको आवश्यकता है उसको तो ऐसा ही होता है कि अगर मुझे मुझे कोई मिल गया तो बस मेरा तो अनंत काल का एक काम हो गया, परिभ्रमण के चक्कर से छूटने। इसलिए ये वस्तु स्थिति ही है, अपेक्षित धर्म से देखा जाए तो ये वस्तु स्थिति है, कोई निमित्ताधीन बात नहीं है। करे तो दर्शन वो बढ़ता है, मिथ्या तो बढ़ता है, अंधकार बढ़ जाता है, दर्शन वो का अंधकार बढ़ जाता है, सीधी बात है। जो मार्ग दिखाने वाले हैं उसका ये अनादर करे तो क्या होगा? एक पद आता है आदि पढ़ा समन मंदिर में, एक पद तो ऐसा पद है, प्रतिमा जी को उद्देश्य करके कोई भक्ति करता है तो ऐसी भक्ति करता है कि अरे क्या चमत्कार है कि तुम तो अचेतन हो और ज्ञान चेतन का कराती हो। प्रतिमा के सामने देखकर ये भक्ति करता है कि ये क्या चमत्कार है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अचेतन से चेतन का ज्ञान हो रहे, लेकिन ये जैन प्रतिमा कोई कैसी चीज है, जिनेन्द्र की प्रतिमा कोई कैसी चीज है कि खुद स्वयं अचेतन होते हुए भी चैतन्य का ज्ञान कराती है, ये गजब की बात है। ऐसा करते हैं, उदाहरण दिया है। जो अनादर करता है उसका मतलब ये है कि उसको तो उस रास्ते पे नहीं जाना है। प्यास नहीं लगी उसको तो उस रास्ते पे जाना ही नहीं है। वो तो उसका तो अभिप्राय है कि तुम गलत हो, तुमने गलत रास्ता पकड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारा निषेध करता हूँ। ऐसा वो विरोध करने वाले को तो निषेध आया, तो निषेध आया इसका मतलब कि तुम्हारा रास्ता गलत है। ऐसी बात हो गई। ये वस्तु स्थिति है उसका यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। अनुभवी महात्माओं का यह अनुभव है, ये बात अनुभवी महात्माओं ने कही। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, सेवे सदगुरु के चरण जो पावे साक्षात। जिन्हें हिंदी में ये पद लिखा है, बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात, बिना नयन की ये बात है। ये चर्म चक्षु वाली बात नहीं है, आत्मज्ञान की बात चर्म चक्षु वाली नहीं है, इसलिए बिना नयन की बात है। और बिना नयन मैंने उस प्रकार का स्पेशल चक्षु, अंतर चक्षु बिना, ये बात को नहीं पा सकेगा। और वो कब पाएगा कि प्रत्यक्ष सदगुरु मिलने से तो प्राप्ति होगी ही होगी। वहां सिद्धांत रख दिया कि यही अनादि स्थित, ऐसा करके दिखा है। पीछे का पद क्या है याद है? जल्दी बोलते नहीं मोटा गुरु, यही अनादि पावे नहीं गुरु तुम बिना, यही अनादि स्थित। अनादि स्थित कहो कि अनादि स्थिति कहो, वस्तु स्थिति कहो, अनादि वस्तु स्थिति ऐसी है। एक भी जीव ने आत्मज्ञान प्रत्यक्ष बोध के बिना पाया हो, कृष्णा लुप्ति मिली हो, ऐसा एक भी अपवाद रूप भी कोई दृष्टांत उदाहरण नहीं मिल सकता, इसको वस्तु स्थिति बोलते जी। इन्हें इस भाव में नहीं मिला था, उसको नहीं मिला था इस भाव में, लेकिन उसने प्रत्यक्ष सत्पुरुष की इतनी महिमा बखानी कि एक ताज्जुब की बात है कि वर्तमान भाव में नहीं मिलने पर भी इतना ज्यादा को क्यों लिखा। मैंने कई ज्ञानियों के ग्रंथ पढ़े हैं, फिर भी प्रत्यक्ष सत्पुरुष की महिमा जितनी श्रीमद जी ने कही इतनी किसी ने नहीं की। अगर ऐसा होता कि इनको कोई सदगुरु होता वर्तमान में, और जब वो कहते तब तो कोई ऐसा भी आरोप कर लेते कि ये तो एक अपना स्वार्थ सदा है इसलिए बोलते हैं, उसको पक्ष हो गया उपकारी के प्रति। लेकिन इनको नहीं मिला ये फिर भी जो कही बात, तो फिर इसमें कोई रहस्य है, बहुत गंभीर रहस्य है, ये बात समझ में आती है। अनुभवी महात्माओं का यह अनुभव है, उसकी उपेक्षा करने योग्य नहीं। वहां तक पढ़े, इसकी अपेक्षा करने योग्य नहीं, उपेक्षा करने योग्य नहीं, इसके प्रति ऐसी बातों पर दरकार छूट जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। उपेक्षा का मतलब है कि दरकार कम हो जाए, प्रत्यक्ष ज्ञान मिले और दरकार कम रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष योगे, प्रत्यक्ष योग से मार्ग प्राप्ति करने वाला जीव को ही यह गुप्त तत्व का अनुभव होता है। क्या कहते हैं कि जिस जीव ने किसी प्रत्यक्ष महापुरुष के समागम से आत्मज्ञान की प्राप्ति की, ऐसा जीव को ये सत्पुरुष का प्रत्यक्ष योग क्या चीज है इसका अनुभव होता है, पर वो चीज गुप्त है, ये गुप्त तत्व है। भाषा गोचर नहीं कर सकते, जैसा कि किसी सत्पुरुष का आत्मा के विषय में, आत्मा को दर्शाने के विषय में ही बोध चल रहा, और सुनने वाले को आत्मज्ञान हुआ, तो उसको ऐसा अनुभव होता है कि मैं अंधेरे में पड़ा था, मुझे हाथ उठाकर प्रकाश में ऊपर ले आए, हाथ को पकड़ कर ले आते, डूबते को फिर हाथ पकड़ कर बाहर खींचते, वैसे वो डूबे जा रहा था तो जैसे पकड़ करके प्रकाश में ले, तो उसका जो अंतर अनुभव का जो विषय है वो इतना वचन अगोचर है तो वही खुद जानता है कि गुप्त तत्व क्या चीज है। ये कैसी वाणी है और कैसा इस वाणी में वचन का वाच्य कैसा खड़ा होता है जिससे वो स्वानुभव गोचर होता है, वाचक शब्दों से वाच्य कैसा प्रसिद्ध होता है जिससे वो स्वयं अनुभव में आ जाता है, उसका एक जैसे कोई दूसरे का मन का विकल्प जान देता है तो उसको कैसा लगता है, टेलीपथी हो गई, आपको ऐसा विचार आया और मुझे भी ऐसा विचार आया, ऐसा कर हो जाता है। तो ये तो एक मामूली सी बात है, ऐसे तो बहुत सी बातें बनती है, लेकिन ये एक इनर करंट चलता है, बिल्कुल अंदर का एक करंट चलता है कि जिसमें स्वानुभव विभूषित जीव आत्मा के वेदन समेत, आत्मा के वेदन साथ उसकी प्रसिद्धि करते हो, और ठीक सुनने वाला जीव अपने आप को, अपने को, अपना वेदन को पकड़ लेता है, स्वयं रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही आत्मा है। गुरुदेव का एक वचन दिन में अनुभव प्रकाश 733 एक वचन ऐसा है ना, उसका दृष्टांत कैसा वचन ये होता है कि देख भाई, स्वयं रूप से अनुभव में आने वाला ज्ञान ही आत्मा है। ज्ञान तो अनुभव में आता है लेकिन स्वयं रूप से नहीं आता है, यही दिक्कत है, यही तकलीफ है। ज्ञान तो समझ में आता है लेकिन स्वयं रूप से वो अनुभव गोचर नहीं होता है, क्यों कि राग में स्वयं रूप अनुभव हो रहा है या राग के निमित्त में स्वयं रूप अनुभव हो रहा है, ये विपरीत अनुभव छूटता नहीं है, तो स्वयं रूप से ज्ञान अनुभव में नहीं आता है, स्वरूप में होते हुए भी। तो अगर किसी जीव को ऐसी तैयारी होगी राग में से एकत्व छूटने के, अत्यंत मंद मिथ्यात्व में आया और अत्यंत स्वरूप के समीप आया, तो उसको ये बात चोट मारती है, ज्ञान स्वरूप से नहीं आया तो मेरे में, और स्वरूप से कैसे अनुभव में नहीं आया, वो पकड़ता है किसी को, तब उसको ये पता चलता है कि ये कहने वाला ने क्या कहा और क्या मैंने पाया अपने आप में। ये गुप्त तत्व है। प्रत्यक्ष योग से मार्ग प्राप्ति करने वाला जीव को ही यह गुप्त तत्व का अनुभव होता है। कौन सा? निमित्त नैमित्तिक संबंध का गुप्त तत्व का अनुभव उसको हो जाता है, इसलिए उनको अपेक्षित धर्म का ज्ञान हो जाता है, अनुभव रूप हो जाता है अपेक्षित धर्म का ज्ञान। शास्त्र पढ़ने की उसको इसके लिए कोई बंधन नहीं है शास्त्र पढ़ने का, कि शास्त्र पढ़े तो ही ज्ञान होवे, शास्त्र नहीं पढ़े तो ज्ञान नहीं होवे, ऐसा कोई बंधन नहीं है। बिना शास्त्र पढ़े ही अनुभव में से उनको बहुत सा ज्ञान होता है। और जिसको ऐसा अनुभव होता है वो अमर हो जाता है, फिर इसको जन्म मरण नहीं, उसके बाद खत्म हो गए। श्रीमद जी ने 200 नंबर के पत्र में लिया है। शास्त्र में कहीं वो आज्ञा परोक्ष है, वो तो बात 33 नंबर के पेज पर उद्धरण भी किया है, यहाँ से किया है। और जीव को अधिकारी मैंने पात्र होने के लिए कही है, बहुत से बात है। मोक्ष के लिए तो ज्ञानी की प्रत्यक्ष आज्ञा का आराधन चाहिए, होना चाहिए। यह ज्ञान मार्ग की श्रेणी मैंने कार्य पद्धति, ये ज्ञान मार्ग की कार्य पद्धति कही, इसको प्राप्त किए बिना कोई दूसरा मार्ग से मोक्ष होता ही नहीं। यह गुप्त तत्व को जो आराधन करता है, वो तो प्रत्यक्ष अमृत को पीता है और वो अभय हो जाता है, उसको भय नहीं रहता। इधर अभय हो जाता है, हमने ले लिया कि वो अमर हो जाता है, क्योंकि वो अमृत को पीता है, फिर उसको मरण कैसा, तो वो अमर हो जाता है, उसको मरण नहीं रहता। कोई कहेंगे कि उसको मरण तो हो जाता है, देह त्याग तो होता है उसका आयु पूर्ण होने पर, आपने ये कहा कि उसको तो मरण नहीं है, उसको देह त्याग के काल में भी अपनी मृत्यु का अनुभव नहीं होता। मृत्यु में सर्वनाश, देह त्याग के काल उसको अपनी मौजूदगी का है, अपना अस्तित्व का अनुभव रहता है, अपना नाश का अनुभव नहीं रहता है। अस्तित्व का अनुभव करते करते वो देह त्याग करता है। दूसरे लोग जो है देह त्याग के काल में मैं मर गया, ऐसा भाव में होते होते मृत्युवत नाशवत दुख को अनुभव करते करते देह त्याग करते हैं, फिर भी इसका नाश तो नहीं होता, हो तो दूसरी जगह उपस्थित हो जाता है, क्षेत्रांतर हो जाता है। वो अमर हो जाता है। पौद्गलिक प्राण त्याग रूप मृत्यु का प्रसंग में से एक बार बचाने वाला निमित्त के प्रति प्रत्युपकार किसी भी चीज से उसका बदला नहीं दे सकते। कोई एक दफे बचा ले, कोई ऐसा रोग हो, सभी ने बोल दिया कि खेल खत्म है और कोई बचते ही नहीं है, कैंसर में से तो कोई बचते ही नहीं है, फिर भी कोई बच गया और उसको बचाने वाला वैद्य डॉक्टर मिल गया, क्या उसको बदला दे सकता है? औद्गलिक प्राण त्याग रूप प्रत्यु, पौद्गलिक प्राण त्याग, એટલે એ જો મૃત્યુ હોય પૌદ્ગલિક પ્રાણ કા ત્યાગ, પાંચ ઇન્દ્રિય, સાસો શ્વાસ, આયુષ, મન વચન કાય કે તિન બલ કર્મન, પાંચ ઇન્દ્રિય પાંચ, મન છઠ્ઠા છે, શ્વાસો શ્વાસ, મન વચન કાયા ઓર આયુ, ઇસકા ત્યાગ દસો પ્રાણ પુદ્ગલ કા હૈ, મેને જડ કી પ્રક્રિયા હૈ, ઉસકા સંયોગ હૈ, ઉસકા ત્યાગ હો જાતા હૈ, તો લોગ ઉસકો કહેતા હૈ કે મૃત્યુ હુઈ, મૃત્યુ નહીં, જીવ કી મૃત્યુ નહીં, તો પુદ્ગલ કા સંયોગ સંજોગ જો પ્રાણરૂપ સંજોગ હતા તો ઉસકા વિયોગ હો ગયા, એસે મૃત્યુ કે પ્રસંગ મેં છે એક એક દફે બચાને વાલા કોઈ મિલતા હૈ તો ઉસકે પ્રતિ કિતના પ્રત્યુપકાર હોના, ઉસકા કોઈ ચીજ સે કોઈ બદલા નહીં દિયા જા સકતા, ઇસ ચીજ સે ઉસકા બદલા દે દેવે, એસા કોઈ બન સકતા હૈ? કોઈ ઉસકા તો બદલા હોઈ નહીં સકતા, કોઈ પૈસા વૈસા સે કોઈ ઉસકા બદલા હોઈ નહીં સકતા, ક્યોંકિ પૈસા સે કોઈ પ્રાણ તો નહીં મિલતા, લાઈફ કેન નોટ બી રિપ્લેસ, ઇન્શ્યોરન્સ વાલે ઇન્શ્યોરન્સ કા પૈસા દેતે તો ઇતના આશ્વાસન દેતે કે તો જીતના આપને ઇન્શ્યોરન્સ લિયા ઉતના પૈસા દેતે, 50,000 કા લિયા તો 50,000 દેંગે, લાખ કા લિયા તો 10,000 દેંગે, 10,000 દેંગે, લાઈફ નહીં દે સકતે, લાઈફ કે બરાબર પૈસે નહીં, પૈસે કે બરાબર લાઈફ નહીં, તો જીવન કો તો સબ સમજ સકતા હૈ કે જીવન ક્યા છે, ઉસકા મૂલ્ય કિસી ભી ચીજ સે હો નહીં સકતા, કોઈ દૂસરી ચીજ સે જીવન કા મૂલ્ય હો નહીં સકતા, ફિર અનંત જન્મ મરણ, તો એ તો એક મરણ કી વાત હુઈ, સત્પુરુષ કે લિયે ક્યા કહેના, કે વો તો અનંત જન્મ મરણ સે બચાને વાલા હૈ, એક જન્મ મરણ એક મરણ સે નહીં બચાને વાલા, અનંત જન્મ મરણ સે બચાને વાલા, ઓર એક રોગ કો ખતમ કરને વાલા નહીં, ચાર ગતિ મેં જીતને ભી દુઃખ હોતે હૈ સર્વ દુઃખ કા ઇલાજ કરને વાલા, શરીર કા રોગ, ઇસકા દુઃખ, અશાતા કા દુઃખ હો, ઉલઝન કા દુઃખ હો, અંદર મેં મૂંઝવણ જિસકો બોલતે હૈ હમારે ગુજરાતી માં મૂંઝવણ કહેતે હૈ, ઉલઝન, સભી પ્રકાર કે જન્મ કે મરણ કે ઉલઝન કે અશાતા કે રોગ કે વેદના કે પીડા કે સર્વ દુઃખો સે મુક્ત કરાને વાલે કે પ્રતિ ઉપકારવશ કે જો બુદ્ધિ હૈ, લાગણી કો ક્યા બોલતે, લાગણી બોલતે ઉપકારવશતાની લાગણી, કોઈ એક દૂસરે કે પ્રતિ હોતી હૈ ને ભાવના, ભાવના બોલતે ક્યા, લાગણી હોતી, પિતા કે પુત્ર પર લાગણી હોતી, પુત્ર કો પિતા પર લાગણી હોતી, સ્નેહ સ્નેહ પ્રેમ લાગણી, વો લાગણી પ્રોપર વર્ડ નહીં મિલતા, ફિલિંગ્સ બરાબર અંગ્રેજીમાં ફિલિંગ્સ બરાબર છે, ફિલિંગ્સ નું હિન્દી શું, ક્યા હોય તો ઉપકાર કરને વાળા કે પ્રતિ જો અહમ ભાવ રહેતા હૈ, જો જિસ સત્પુરુષ ને અનંત જન્મ મરણ કો મિટાયા, ઉસકે પ્રતિ જો અહમ ભાવ, ઉસકી જો મહિમા વાળા ભાવ હૈ, ઉસકો યહાં ઉસકા ફીલિંગ કહેને માતા હૈ, જિસકો અનુભવ હોતા હૈ, ટુ ફીલ મેને અનુભવ હોના, મહેસૂસ હોના, અમારે ગુજરાતીમાં તો લાગણી શબ્દ બહુ, હા ફીલિંગ, તો હિન્દીમાં ઉસકો મહેસૂસ કરના, ભાવ કો મહેસૂસ કરના, કિતના ઉપકાર કિયા હમારે પર, એસા મહેસૂસ કરના, ઉસકા પ્રકાર કૈસા અલૌકિક હોતા હૈ, મને કિતની માત્રા મેં યે હોતા હૈ, जैसे एक मरण के मरण से छुड़ाने वाले को के प्रति जितनी मात्रा में उपकार बुद्धि होती है, इससे अनंत जन्म मरण से छुड़ाने वाले के प्रति कितनी मात्रा में वो उपकार बुद्धि होती है, उसका ये अंदाज है। तो कितना अलौकिक होता है, जैसे लोक में कोई इसका दृष्टांत नहीं, विश्व में इसका कोई दृष्टांत नहीं होने से वो कितना अलौकिक होता है। इसका महत्व तो वही इस वास्तविकता मां से गुजरने वाले को ही समझ में आता है, वो कोई कहने की चीज नहीं है। उस प्रसंग में से जो गुजरता है, जिसको हित हो जाता है, आत्महित हो जाता है, और जिसको ये पता चल जाता है कि मेरा आनंद जन्म मरण छुट गया है। अगर ये महापुरुष नहीं मिले होते तो न जाने में कितने अनंत काल तक और भी संसार के दुखों में भटकता, चार गति में भटकता, इसका भी उसको अंदाजा जाता है। और इसमें से छूट गया, इसका भी उसको अनुभव रहता है, उसको उसका एहसास रहता है, मैं छूट गया, अब मैं छूट गया हूँ, ये रास्ता मुझे मिल गया, रास्ता अब मेरे हाथ में है। कल एक बहुत अच्छी चर्चा चली, किसी ने प्रश्न किया था कि ज्ञानी को भी बार बार अनुभव, किसी को अल्प काल में आता है, उसमें लंबे काल में आता है, तो फिर वो बार बार आने के लिए वो कोई क्या करता है, या उसको कोई लंबा काल निकल जाए तो उसको कोई दुख होवे के नहीं होवे, कोई खेद होवे के नहीं होवे, ऐसा कोई प्रश्न था। उन्होंने कहा कि परिणति तो है, अनुभव में उपयोग शुद्धोपयोग बार बार आता है, लेकिन परिणति का बार बार का सवाल नहीं है, परिणति तो चालू रहती है। तो परिणति चालू रहती है तो परिणति में तो अपना आत्मा अपने हाथ में है और मार्ग अपने बस में है, कैसे अंदर में जाना, शुद्धोपयोग में कैसे जाना, उसको सीखना नहीं है। जैसे पतंग का दोर अपने हाथ में है, पतंग इधर गुनाट खाता है, इधर गुनाट खाता है, फिर भी दोर अपने हाथ में है, उसको तो बराबर कंट्रोल है उस पर। ऐसे परिणति का कंट्रोल इतना है और उपयोग बार जाता है, उसको पता है, तो भी मैं पूरे का पूरा मेरे घर में मैं हूँ, मेरा घर छोड़ के मैं कभी नहीं गया, इसका अनुभव उसको बराबर है परिणति में। जैसे कोई पड़ोसी के यहाँ बैठने को जाता है तो ऐसा मान नहीं लेता कि ये पड़ोस वाला घर मेरा है, समझ नहीं लेता कि ये घर ही मेरा है, बोले कितना ही सुंदर हो अपने घर से। पड़ोस के घर में जाए तो भाई अपना घर ही अपना घर है, वो बात रख के जाता है, भूलता नहीं, इसमें ऐसा ही वो अपने घर में सबूत है, बराबर सलामत है, कोई उपयोग की इतनी चिंता है ऐसी बात नहीं, जो क्यों नहीं हुआ ऐसी कोई चिंता मुझको नहीं रहती। अच्छी तरह परिणति वाली चर्चा अच्छी, परिणति के विषय में काफी बात है। हाँ, निरंतर बना रहता है और परिणति में उपयोग बार जाता है, लेकिन पूरा भान है अपने स्वरूप का, बराबर उसमें परिणति में भान रहता है, परिणति चालू ही चालू है, और परिणति में अपना स्वरूप अपने हाथ में ही है, कि स्वरूप तो स्वरूप से छूटा नहीं है, उपयोग गया है, मैं नहीं गया है। अपने उपयोग में अपनत्व बुद्धि तो उन लोगों को है जिसको स्वरूप में अपनत्व नहीं है, उसको जिसमें जिसको परिणति से स्वरूप में अपनत्व हुआ रहता है, चालू रहता है, उसको उपयोग गया तो उपयोग गया, मैं नहीं, तो भिन्न पड़ता है, भिन्नता रहती है, परिणति में भिन्नता रहती है, और उपयोग बाहर जाता है तो कोई बाहरी पदार्थों से भिन्नता रहती है, इसलिए वो वैज्ञानिक की तरह एकमेक नहीं होता, एकाकार नहीं होता, तदाकार नहीं होता। नहीं, भावना तो रहती है, वो बात चले के साथ साथ है। जैसे जो भावना की बात है, तो मोक्ष की भावना और मुनि दशा की भावना, वो भावना तो रहती है, वो बात साथ ही साथ ली थी, वो बात भी रहती है, नहीं रहती वो बात नहीं है। फिर भी जैसे शंका हो जाए, ऐसी बात नहीं है उपयोग के विषय में, क्यों उपयोग नहीं हो रहा है, कैसे उपयोग होना, वो उसको सीखना नहीं है, वो उसको आता ही है। तो समझता है कि मैं प्रवृत्त हूँ, प्रवृत्ति में खड़ा हूँ, तो उपयोग बाहर रहता है, लेकिन निवृत्ति में आता हूँ तो उपयोग अंदर आ सकता है, क्योंकि उसको वो चीज सीखनी नहीं है कैसे अंदर आना हो। इसलिए नहीं, कर्तृत्व का तो सवाल ही नहीं, ये भावना का विषय, मैंने सहज मुझे ऐसा हो, मेरी मुनि दशा हो, मेरी मोक्ष दशा हो, पूर्ण शुद्धि हो, शुद्धि विशेष हो, तो ये बात रही कि उस वास्तविकता में से गुजरने वाले को ही वो समझ में आता है। जैसे ये सुगानी जी ने कहा, सुगानी जी का पत्र पढ़े आप, द्रव्य दृष्टि प्रकाश, अनंत तीर्थंकर से भी अधिक है मेरे लिए, तो अनंत तीर्थंकर से अधिक। कैसे कहा, कैसे कहा, अनंत तीर्थंकर के समोसरण में मेरा जाना हुआ, ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, यहां से हो गई, तैयारी तो भीतर में हुई थी, लेकिन कितना उसको महत्व आता है, स्वयं की तैयारी हुई तब तो निमित्त हुआ, लेकिन कितना महत्व आता है कि मेरे लिए तो अनंत तीर्थंकर से अधिक ये साबित हुए। कितनी गिनती के में, गिनती का विषय कितना बड़ा है ये, तो ये प्रत्यक्ष योग का महत्व, तो उस वास्तविकता में से गुजरने वाले को ही समझ में आता है, दूसरे को ये बात सही रूप से, वास्तविक रूप से समझ में नहीं आते। पुनः द्रव्यानुयोग परम गंभीर और तत्व पाने का उत्कृष्ट निमित्त है। बात लेते हैं कि आत्म तत्व का स्वानुभव करने में, इसको तत्व पाना ऐसा कहने में आता है, स्वानुभूति को ही तत्व पाया ऐसा कहते हैं, उसका उत्कृष्ट निमित्त कोई हो तो चारों अनुयोग में से एक द्रव्यानुयोग है, वो ऐसा एक विषय है कि जिसमें स्वानुभूति का विषय ज्यादा आता है, और ठीक यही विषय पर उसका गंभीर निरूपण है, जो तीन अनुयोग में नहीं है। इतना चार अनुयोग में से तीन अनुयोग अनुयोग की बराबरी में अगर समझे तो द्रव्यानुयोग स्वानुभव करने के लिए, आत्म तत्व पाने के लिए बहुत उत्कृष्ट निमित्त है, सर्वोत्कृष्ट निमित्त है, और उसका विषय भी इतना ही गंभीर है, परम गंभीर विषय है। श्रीमद जी ने तो वहां तक बात किया है कि द्रव्यानुयोग परम गंभीर है और ये शुक्ल ध्यान का कारण है। क्या स्वानुभव का कारण नहीं लिया, स्वानुभवी जीव को ये शुक्ल ध्यान का निमित्त पड़ता है, पात्र जीव को ये अनुभव का निमित्त पड़ता है, और स्वानुभवी को ये शुक्ल ध्यान तक ले जाता है। अपनी दशा में कोई जीव आया तो द्रव्यानुयोग के स्वतत्व के गंभीर ये स्वभाव है, गंभीर स्वभाव में द्रव्य का गंभीर स्वभाव को बताने वाला होने से उसको इस विषय को ही गंभीर बता दिया। तो इस गंभीरता में, उसकी गहराई में, उसकी ऊंडाई में ध्यान को ले जाता है, शुक्ल ध्यान की श्रेणी चल जाता है। इसलिए द्रव्यानुयोग को परम गंभीर कह करके शुक्ल ध्यान का कारण बतलाया है। यहाँ तो विषय मुमुक्षु का चलता है, इसलिए हमने ये बात ऐसे लिए कि ये तत्व पाने का उत्कृष्ट निहित है, इतनी बात नहीं है। श्रीमद जी ने वहां तक लेकिन वो लिया है, ये विचार कैसे लिया है। इसमें ऐसा निरूपण होने से, इसमें मैंने द्रव्यानुयोग में ऐसा निरूपण होने से चारों अनुयोग में द्रव्यानुयोग का महत्व विशेष है, विशेष महत्व रखता है द्रव्यानुयोग चारों अनुयोग। हाँ, इतना जरूर है कि किसी भी एक अनुयोग पर द्वेष करने लायक नहीं है, या किसी भी एक किसी भी चारों में से किसी अनुयोग पर कोई हीनता की भावना नहीं होनी चाहिए। ये हीन है, हीन है, द्रव्यानुयोग अच्छा, ये हीन है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। ये इसका महत्व होते हुए भी चार अनुयोग में तीनों अनुयोग द्रव्य की गंभीरता को इनडायरेक्ट रूप से कहते हैं, द्रव्यानुयोग सीधा डायरेक्ट रूप से कहता है। फर्क इतना ही कहता है तो चारों अनुयोग एक ही बात है, लेकिन तीनों अनुयोग में वो बात इनडायरेक्टली आती है, वो डायरेक्ट। इसलिए तीनों अनुयोग के प्रति, किसी एक अनुयोग के प्रति, किसी तीनों में से किसी के प्रति कोई विरोध भाव उपस्थित नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं आना चाहिए। ये द्रव्यानुयोग प्रत्यक्ष ज्ञान के समागम में विचार में ऐसा जो ये द्रव्यानुयोग है, इसका विषय इसलिए यहाँ चर्चित किया, प्रत्यक्ष ज्ञान के योग में ही अध्ययन करने लायक है, जिससे इसका जो फल है तत्व पाने का वो सहज मात्रा में मिल सके।
Oh,